नमस्ते आदाब साथियों, हम आनंदी यानी कि आशा दीदी फिर से हाजिर हैं अपनी कहानियों और अनुभव का पिटारा लेकर। स्वागत है आपका पूरक पोषाहार की सातवीं कड़ी में। इस कड़ी और अगली कड़ी के दौरान हम उन सभी बातों पर दोबारा ध्यान देंगे जो हमने पिछले छह कड़ियों के दौरान की हैं। और साथ ही हर हफ्ते की तरह इस कड़ी के अंत में भी हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और उस सवाल का सही जवाब देने वाले किन्हीं तीन विजेताओं को हर हफ्ते की तरह मिलेगा ₹50 का मोबाइल रिचार्ज। अरे हाँ, मोबाइल रिचार्ज से याद आया कि हमने तो अभी तक उन तीन विजेताओं के नाम आपको बताए ही नहीं जिन्होंने पिछली कड़ी में सही जवाब दिया था। तो चलिए अभी जान लेते हैं वो नाम। नगर नौसा पंचायत से संगीता देवी, भूथाघर पंचायत से रेखा कुमारी और जुनियार पंचायत से सिंतु देवी, आप तीनों को मेरी तरफ से बधाई और धन्यवाद। और साथियों, आज हम आपसे अपने अनुभव नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी साझा करेंगे जो हम अपने बच्चों को अक्सर सुनाते हैं। जब भी वो खाना ठीक से खाने के लिए मना कर देते हैं ना, तब हम उनको ये कहानी सुनाकर समझाते हैं कि क्यों पौष्टिक खाना सही मात्रा और सही वक्त पर खाना उनके विकास के लिए जरूरी है। तो आइए सुनते हैं वो कहानी। एक दिन हमारी मुलाकात कुपोषण के दुष्ट राक्षस से हुई। वो मुझे देखकर बोला,
क्यों आशा दीदी, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आप बड़ी मेहनत करते हो। लेकिन दीदी, हम और हमारे बाकी राक्षस दोस्त आपकी इस मेहनत को सफल नहीं होने देंगे।
अच्छा, वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है?
क्यों लगता है? देखो, अपनी चारों ओर देखो, कितने बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं। उनके माँ बाप को तो पता ही नहीं कि कुपोषण को कैसे दूर भगाना चाहिए। चारों तरफ हमारा यानी कि कुपोषण की जय जयकार।
वैसे तुम्हारी बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन हम भी इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। तभी तो हम घर घर जाकर बताते हैं कि बच्चों को क्यों 6 महीने के बाद से ही माँ के दूध के साथ साथ घर में पका हुआ कम मसालेदार और नरम खाना देना जरूरी है।
अच्छा, लेकिन आपकी कोई सुनता भी है? नहीं ना?
ऐसी बात नहीं है, जानकारी की थोड़ी बहुत कमी है बस। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा स्वस्थ रहे, उनका मानसिक और शारीरिक विकास हो, वो जिंदगी में तरक्की करें। इसलिए हमारे बताने के बाद बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को पौष्टिक आहार देने लगे हैं। अब तो बस तैयारी कर लो यहाँ से जाने की।
अच्छा, जरा हम भी तो जाने कि बच्चों के माँ बाप को क्या क्या बताते हो आप।
अच्छा तो सुनो, बच्चे की उम्र जब 6 महीने की हो जाए तो उसे माँ के दूध के साथ दिन में कम से कम 3 बार घर में पका खाना खिलाना है, जैसे कि चावल, रोटी, दाल, सब्जी, मौसमी फल, दही। और इस बात का खास ध्यान देना है कि बच्चों को हफ्ते में जितनी बार हो पाए अंडा और मांस मछली खिलाना है। इससे उनके शरीर को जरूरी ताकत मिलेगी जो कि बढ़ते बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।
क्या बकवास है, बच्चे मांस मछली और अंडा थोड़े ही पचा पाते होंगे।
बिल्कुल पचा पाते हैं। बच्चों को अगर इस उम्र से अंडा और मांस मछली नहीं खिलाओगे तो उनके शरीर में जरूरी प्रोटीन नहीं जाएगा। और पता भी है कि नहीं, बच्चों के दिमागी विकास, खून में आयरन और उनके मांसपेशियों में ताकत और सही ऊर्जा के लिए मांस मछली और अंडा कितना फायदेमंद है।
अच्छा, ऐसा भी क्या होता है उसमें?
और नहीं तो क्या, देखो 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों को माँ के दूध के साथ ये सब खाना नियमित रूप से दिन में 3 बार खिलाना है, और हर बार में कम से कम पाव भर कटोरी का आधा हिस्सा खिलाना है। साथ ही ये याद रखें कि खाना इतना गाढ़ा हो कि वो एक चम्मच में रुक सके। ऐसा नहीं कि आप फल का रस और दाल का पानी पिला रहे हैं, इससे बच्चे का पेट तो भरेगा लेकिन जरूरी पोषण नहीं मिलेगा बच्चे को।
अच्छा, और ये जो आप बोल रहे हो कि घर का खाना खिलाए, तो क्या बच्चे के लिए अलग से खाना बनाना पड़ेगा?
बिल्कुल, अगर अलग से खाना बना पाए तो अच्छा है, नहीं तो जो घर में बनता है उसमें मसाला डालने से पहले ही बच्चों के लिए खाना अलग से निकाल लें और फिर मसाला मिलाएं।
ये बात सही है, पर बच्चे तो बाजार का खाना कितना पसंद करते हैं, अब ऐसे में क्या होगा फिर?
अब ये तो हर घर की समस्या है, हर बच्चा अलग होता है, कोई आराम से खा लेता है तो कोई नहीं, और फिर जो बच्चे बीमार होते हैं वो भी बहुत बार खाना खाने के लिए मना करते हैं, इसलिए तो बच्चे जिद्दी या बीमार हैं, उन्हें और धीरज से और प्यार से खाना खिलाना पड़ेगा। कहानी सुनाते सुनाते खिलाइए उसको, अपना पसंदीदा खाना बना कर दें, और अगर फिर भी जिद करता है तो छोटे छोटे हिस्सों में बार बार खिलाइए। क्या तुम जानते हो कि खाने में घी गुड़ डालने से खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बनता बल्कि इससे बच्चों को ताकत भी मिलती है। वैसे ही अगर बच्चा सिर्फ दाल खाना ना चाहे तो उसमें सब्जी भी डाल सकते हैं, समझे कि नहीं?
वैसे तो हम आपको आज यहाँ मुसीबत में डालने के लिए आए थे, लेकिन आपने तो हमें ही उल्टा सोच में डाल दिया। अब अगर घर में आप लोग पूरक पोषण आहार से जुड़ी ये सब चीजें करने लगोगे तो फिर हम जैसे जो बच्चे को कुपोषित करते हैं, फिर तो हमारा काम ही नहीं है कुछ।
वही तो, लेकिन हमारा तो काम ही यही है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबका बच्चा तंदुरुस्त स्वस्थ और विद्वान बने। सही आहार से बच्चा बलवान ही नहीं विद्वान भी होगा। तो साथियों, सुना ना आपने किस तरह से कुपोषण फैलाने वाले शैतान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर आप चाहते हो तो आप भी इस तरह से कुपोषण को जवाब दे सकते हैं। कैसे? बहुत ही आसान है, बस अपने बच्चे को पोषाहार सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से दें। अगली कड़ी में भी हम पूरक पोषाहार से जुड़ी कुछ और जरूरी बातों पर ध्यान देंगे जो हमने अपनी पिछली 6 कड़ियों में जानी है। तो अब आप हमें बताइए कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए पूरक पोषाहार से जुड़ी बातों पर ध्यान देती हैं? अगर नहीं तो क्यों? वो क्या कारण है जिससे आप अपने बच्चे को पूरक पोषाहार नहीं दे पाती? अपनी राय और अनुभव हमारे साथ बांटने के लिए अपने फोन में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से जान लेते हैं उन विजेताओं के नाम जिन्होंने पिछली कड़ी के अंत में पूछे गए सवाल का सही जवाब दिया था। नगर नौसा पंचायत से संगीता देवी, बूथाखर पंचायत से रेखा कुमारी और जुनियार पंचायत से सिंतु देवी। तो साथियों, याद रखिएगा, सही आहार से बच्चा बलवान ही नहीं विद्वान भी होगा। हम आशा दीदी जल्दी ही आपसे मिलेंगे अपने एक नए अनुभव के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।